نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیو، ہر دعوت والا ساتھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ترقی ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is every brother who's involved in the effort of Dawat has this desire that he should progress.
اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ جب یہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو ترقی ہو رہی ہوگی.
Those people who know this, they kind of interpret,
who know these people,
who know these people also interpret or know or assume that because these people are attached to the work of tabligh, they are progressing.
اور ہر دعوت والا ساتھی یہ چاہتا ہے کہ کام کو ترقی ہو.
And every brother who's involved in the effort of Dawat has the desire that work should also progress.
کون سا تبلیغی یہ چاہتا ہے کہ کام کو ترقی نہ ہو؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے.
Everybody desires this.
اور خاص طور پر اگر کسی کا کسی چیز میں جان اور مال لگا ہو، پیسہ لگا ہو اور وقت لگا ہو، وہ تو بہت ہی چاہتا ہے کہ اس کو ترقی ہو.
And especially if somebody is investing his time and energy and money in something, definitely he'll have the strong desire that it should progress.
بہت زمانے سے کام میں لگے ہوئے ہیں، برس ہا برس گزر گئے، کیسے کوئی انسان آدمی اپنی چیز کو ضائع ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟
The person who is involved in the effort for a very long time, for a very many number of years, how would he even want to see that something gets destroyed or something gets spoiled?
جیسے کوئی آدمی اپنا بہت ہی قیمتی وقت لگا کے اور بہت زیادہ پیسے لگا کے بہت من سے اپنا کوئی گھر بنایا ہو، تو وہ بھلا کیسے چاہے گا کہ اس کو آگ لگ جائے کھڑے کھڑے؟
So the person who has invested his money and time and heart and money and he builds a house, how would even ever he desire that there will be fire in that house and it gets destroyed?
اور اسی لیے اس کی پوری فکر اس کو ہوتی ہے کہ اس کو آگ نہ لگے. اس کی تدبیریں جتنے بھی ہوتی ہیں کرتا ہے.
That's why he always will have this fear and concern that this house won't catch fire and he takes all the precautions that are needed for it.
تو اس لیے ہر دعوت والے ساتھی کو اپنی ترقی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہونا ہوتا ہے اور کام کی ترقی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہونا ہوتا ہے.
That's why everybody who's in the world in the effort of tabligh should always be concerned and worried about his own progress and the progress of the work as well.
اور ہماری ترقی جس چیز سے نہیں ہوتی اس کو بھی ہم نقصان کنسیڈر کرتے ہیں، اور دوسروں کا کام نہیں ہو رہا، کام نہیں پھیل رہا، اس کو بھی ہم نقصان سے تعبیر کرتے ہیں.
And the thing that is causing us and hindrance in our progress or the progress of others, we would consider it as loss. We consider that something as a hurdle or burden.
اور ایسا آدمی رکاوٹوں پر بہت نظر رکھتا ہے.
And this person will always be looking at these hurdles and stops.
میری ترقی اگر نہیں ہو رہی ہے تو کون سی چیزوں سے نہیں ہو رہی وہ دیکھنا ہوتا ہے.
And if I'm not progressing, then what are the things that are stopping me from this progress? He'll be looking out for those.
کام اگر نہیں پھیل رہا ہے تو کیوں نہیں پھیل رہا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے.
If the word is not, work is not spreading, then he will see that why the work is not spreading, he'll be concerned about it.
اس لیے کام کرنے کے طریقے میں جو سب سے پہلے چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ رکاوٹ کیا ہے اس کو دور ہونا چاہیے.
He said that's why in the making the effort, the one of the things that we always need to be concerned about is what are the things that are stopping the progress and we need to be concerned about those.
اس کو کہتے ہیں دفع مضرت، نقصان کا دور کرنا.
And this is what is called as removing the hurdles or removing the loss.
اور دوسری چیز ہوتی ہے جلب منفعت، فائدے کا حاصل کرنا.
And the second thing is worried about getting the benefit or acquiring the benefit.
قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت پر.
And the matter of principle is that always the concern to remove the blocks and hurdles always supersedes the other effort where we are worried about the things, acquiring things or adopting things which will contribute to progress.
जैसे एक शरीयत का भी उसूल है जो हम लोगों के जहनों में आमतौर पर नहीं रहता है वो ये है कि गुनाह का छूटना मुकद्दम होता है नेकी के करने से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मन आबदुन नास सबसे बड़ा आबिद कौन है
It was asked from Rasulullah who is the biggest abid worshipper.
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जो बहुत नफिलें पढ़े जो बहुत तस्बीहात पढ़े जो बहुत सदका करे बहुत रोजे रखे जो बहुत हज और उमरे करे उसने ये नहीं फरमाया उसने फरमाया कि जो गुनाह से बचे उसने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास हराम से बच जा सबसे बड़ा इबादत गुजार हो जाएगा अगर दावत वाले साथी को ये एक हदीस भी याद रह जाए बड़ा काम करेगी हमारी तरक्की का राज यही है
And this is basically the secret of our progress.
और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है
And this is the biggest problem from America as well.
खास तौर पर
Especially.
यूं तो पूरी दुनिया में है लेकिन यहाँ खास तौर पर
it's a problem in all of the world, but especially in America.
क्योंकि अगर किसी के बर्तन में सुराख हो तो आप उसमें कितना ही दूध डालते जाएं वो रहेगा नहीं
so if somebody is holding a bowl and if it has a hole in it, how much ever milk you put in it, you will not have anything in the bowl.
नाजायज काम सुराख की तरह है
And the, unlawful things are like the hole in the bowl.
हराम काम सुराख की तरह है
The haram things are like a hole in the bowl.
और हमारा यही मसला है कि हम लोग नेक कामों के करने के साथ साथ किसी न किसी तरह की बुराई में रहते हैं तो बहुत कीमती से कीमती चीज अपने बर्तन में डालते हैं बड़े बड़े बयानात हमारे झोली में पड़े हुए हैं हमने बहुत बयानात खुद भी किए हुए हैं हमारी अगर बात तय हो जाए तो हम कितना जबरदस्त बयान करते हैं सबको पता है वैसे हर आदमी जो दावत का पुराना बयान करने वाला है ना वो अपने को समझता यही है कि वो बहुत अच्छा बयान करता है एक साहब ने कहा कि मेरे में दो ऐसी खसूसियात हैं कि दूसरे में नहीं एक तो यह है कि मेरा हाफिजा बड़ा तेज है
He said that my memory is very strong.
मैं नहीं समझता कि किसी का इतना तेज है कहने का दूसरी खसूसियत क्या है आपकी कहने का दूसरी इस वक्त अभी मुझे याद नहीं आ रही
He said the second one, I don't remember it now.
तो बयान के मामले में हम सब ऐसे हैं कि हम समझते हैं बहुत जबरदस्त बयान करते हैं बयान में सबसे बड़ी खूबी सही बोलने की है और सही बोलना बहुत तहकीकी इल्म चाहता है बहुत चूंकि हम सब पुराने हैं मैं पुरानों में बात कर रहा हूँ वो जहन में रख के कर रहा हूँ इसलिए हर बात फैलाने की नहीं रहती जो पुरानों में बोले वो नयों में बोलेंगे अब फैल जाए तो अच्छा नहीं रहता ना हम में से शायद ही कोई सही बयान करने वाला है हमारे एक साथी थे जिनके साथ हमेशा हम जमात में जाते थे बहुत मजाकी भी थे आप लोग जानते भी होंगे उनको यहाँ पे भी उनके साथ मेरे बहुत चिल्ले गुजरे हैं न्यूयॉर्क में मेरे बहुत चिल्ले अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे हैं लेकिन बहुत पहले की बात है 90s की बात है
I
वो हमेशा वही अमीर रहते थे.
उनकी
खसूसियत ये थी कि वो बोलते थे कि जमात में मैं हूँ और दूसरा कोई अमीर हो ये नहीं हो सकता. अच्छा बयान भी अच्छा करते थे माशाल्लाह, बहुत मुजाहिद आदमी थे. मगर मसला उनका यही था कि वो हर बयान में एक आध गड़बड़ जरूर. अच्छा मैं उनसे मुजाकरा करते रहता था कि ये बोलना है ये नहीं बोलना है ये बोलना है ये नहीं बोलना है. एक दिन कहने लगे कि मुझे पता चल गया कि तेरा सबसे बड़ा मुजाहिदा क्या है. दोस्ती हमारे में अच्छी खासी है, बहुत बीमार हैं, दुआ करो अल्लाह पाक उनको शिफा दे दे. तो बाहर निकल भी नहीं सक रहे घर से. कहने लगे सुनाओ क्या है मेरा बड़ा मुजाहिदा. मैंने उसने कहा कि हमारा बयान सुनना तेरा बड़ा
मुजाहिदा.
मैंने कहा इसमें तुम गलत बयान ही नहीं कर रहे. क्योंकि हम बयान बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उसमें एक आध बात गड़बड़ की कर देते हैं. सिर्फ निजामुद्दीन ऐसा है जहाँ पे मैंने बगैर गलती के बयान सुने. और हमारे हैदराबाद में बाद हमारे अकाबिर दावत के ऐसे हैं जिनके बयान में कोई गलती नहीं होती थी. 15 साल मैंने मस्जिद नूर में इमामत की है शिकागो में. और वो मरकज है. इन 15 साल में मुझे कोई बयान याद नहीं है जो बगैर गलती के मैंने सुना. एक आध गलती जरूर हमसे गड़बड़ की होती है. वो इल्म की कमी है. तो इसलिए इल्म का सही होना बहुत जरूरी होता है. वो हमारे दोस्त एक अजीब बात भी बोलते थे जिनका भी अभी मैं जिक्र किया. वो कहने के सुनो एक बात, हम जाहिल हैं, हमने कभी दावा नहीं किया कि हम आलिम हैं. पुराना तबलीगी है बहुत. वो कहते हमने कभी दावा थोड़ी किया कि हम आलिम हैं. अब हम बयान भी करते हैं. अब हमें तुम ये बताओ कि हम ये कहाँ से बयान करते हैं जबकि हम जाहिल हैं. तो जाहिर है कि हम वहीं से बयान करते हैं जहाँ से हम सुन रहे
हैं.
हमारे सामने जिन लोगों ने बयान किया बयान करते हैं वो हमें याद हो जाते हैं सुन सुन के, वही हम सुनाने लगते हैं. तो जिन लोगों ने हमें सुना सुना के इस बयान का आदि बनाया ये गलती तो उनकी है कि उन्होंने हमें ये सुनाया. तुम्हारा काम उनको पकड़ना था ना कि हमको. अच्छा ये कौन होते हैं? ये पुराने होते हैं. आपकी तरफ पलट गई बात. ये जो बात पुराने बोलते हैं नयों में वो चीज चलती है. जैसे वो बोलते हैं वैसे चलती है. जिस अंदाज से बोलते हैं उस अंदाज से चलती है. तो अब हमें हम किस नाजुक जगह पे खड़े हैं. तो इसलिए हमें इल्म सीखने की बड़ी जरूरत है. जितना दाई के पास इल्म होगा उसकी दावत में उतनी जान होगी. हमारे हैदराबाद के जो अमीर थे मोहतरम नईमुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीब आदमी थे. उनकी आदत थी कि वो हमेशा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ते रहते थे. उसका नतीजा यह था कि उनके बयान में उसके असर आते. जिससे मैं तबलीग के काम में ज्यादा लगा मानूस हुआ. जब छोटा था नई नई मेरी इमामत थी मस्जिद की तो वहां पे एक हमारे बुजुर्ग थे दावत के, बहुत ही अजीब गरीब आदमी थे. अपनी जिंदगी में बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे. वो हमेशा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ते थे. बेहतरीन बयान करने वाला आदमी था.
we There used to be a person who used to always read the Alhamdulillah of the Wale, and then this Bayanats used to be very effective.
दाई का काम ये होता है कि वो अपने इल्म का चंदा सही सोर्सेस से मजीद करता रहे
and the work of दाई is he collects the right knowledge from the right sources all the time.
ठीक है, हम जो सुन रहे हैं वो सुनाना होता है, लेकिन हम सुनने में जो बेहतियाती होने के पॉसिबिलिटीज हैं वो रहते ना, तो वो दूर कैसे होंगे वो?
He says that yes, there is no doubt that you will be saying what we have heard, but whatever the things which we miss or whatever the deficiencies that we have in hearing, how are we going to correct those?
तो इस वजह से दाई का मुताला बहुत होना,
and that's why दाई used to always be
वो लोगों को तरबीब देते नहीं पे नहीं, लोगों को जमात में लेके नहीं बैठ जाना कोई नई किताब.
He says that he will not be reading a new book in the jamaat.
मगर खुद से तो आदमी पढ़ता पढ़ता रहे,
खुद
से तो सीखता सिखाता रहे,
क्योंकि
दाई के पास में अगर इल्म नहीं होगा तो बसीरत कहाँ से आएगी?
अदौ
इल्लाह का काम को करते रहे लेकिन अला बसीरत न रहे तो कहाँ से हुआ वो? तो इसलिए अपनी तरक्की का मतलब ये होता है कि मैंने जो बातें कही उसमें से एक ये भी है कि बात सही बोले, बात सही सुने.
And what, as I mentioned about the progress of the dai, what it means is he should be hearing it rightly and he also be saying it.
मेरी गलती, मेरी बातों में कहाँ गलतियाँ हैं कहाँ नहीं, इसका सही अंदाजा होना.
Actually, the person should know that where are the mistakes and where I don't have the mistakes in my talks.
और अपनी और अपना अपने मकाम को पहचाने हुए रहना.
And he has to understand his position.
अपना मकाम यह है कि हम आलिम नहीं है, सबसे पहला यह है, लिहाजा अगर कोई आलिम हमको मुतवज्जे करे तो हमें मुतवज्जे हो जाना चाहिए अपने इल्म को सही करने के लिए. इसलिए उलमाए किराम की एहतियाज हमेशा रहेगी, मगर जाहिर है कि इसमें बाज मरतबा एक फॉल्ट आ जाता है.
That's why it says that there is obvious that there will be a fault that comes into this.
और वो ये होता है कि भाई बाज मरतबा हमें हमारे काम से ही रोकने वाले उलमा हो जाते हैं.
And they have said that sometimes you will see some ulama who stop us from our work.
बाज मरतबा उनकी बातों पे एतमाद नहीं किया जाता क्योंकि उनकी बातों में टकराव आ गया है.
And sometimes we don't rely on their words because those words conflict with
us. ऐसी सूरत में तो हमको एहतियात करना पड़ेगा.
And in this type of situation, yes, we'll take precautions.
और ये सब जगह होता है.
And it happens everywhere.
हर लाइन में होता है.
In every line.
डॉक्टरों में होता है.
In doctors.
एक डॉक्टर एक के लिए एक चीज को तजवीज करता है, प्रिस्क्राइब करता है, दूसरा डॉक्टर बोलता है ये किसने किया, ये डॉक्टर था या हज्जाम था? ऐसा बहुत होता है. बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियरों में इख्तलाफ होता है, लायरों के रायों में इख्तलाफ होता है, हर साहिब फन में ये चीज पाई जाती है, उनका जो ग्रुप होता है, लेकिन हम उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं फिर भी. डॉक्टरों में से अच्छा डॉक्टर कौन है हम अंदाजा लगा लेते हैं. वकीलों में से अच्छा वकील कौन सा है हम अंदाजा लगा लेते हैं. इंजीनियरों में से अच्छा इंजीनियर कौन सा है हमें पता चल जाता है. बाद मरतबा इसमें भी ऐसी सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी और पड़ती है. और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है. उन्होंने फरमाया खियारुकुम खियारुल उलमा शिरारुकुम शिरारुल उलमा. तुम में बेहतरीन वो है जो उलमा में बेहतरीन है, तुम में बदतरीन वो है जो उलमा में बदतरीन है.
रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने खुद ही तकसीम फरमा दी है पहले से. This is the distribution that
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has already made.
तो ये तो पेश आएगा.
And this is going to happen.
लेकिन यह है कि हमारी एहतियाज और जरूरत उलमा से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा.
It's not that we will not be having the dependency on ulama or that's going to get reduced. That's not going to happen.
क्योंकि उनके पास वही का इल्म जिंदा है.
Because they have the ilm of wahi.
उनकी फजीलत यही है कि कुरान का और हदीस का जो इल्म है, वही का जो इल्म है, वो महफूज किए हुए हैं, उसको उनकी अथॉरिटी वही है.
The fazila of the ulama is they have accumulated the knowledge of the Quran and wahi. Then that is a special.
उसकी रोशनी दे देंगे आपको.
And they will give you the nur and light of that.
भले से वो अंधेरे में बैठे हुए हों.
Even though they might be sitting in the darkness.
जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर इलाज करता हो वो खुद भी तंदुरुस्त हो. हमने बहुत से डॉक्टर देखे हैं जो खुद ही बीमार हैं. खांस रहे हैं और खांसी की दवा दे रहे हैं बीमारों को. खुद ही को लूज मोशन हुए हैं, दूसरे को लूज मोशन की दवा दे रहे हैं. बाज मरतबा ऐसा होता है, मगर उनके पास वो वही का नूर मौजूद है. तो उसका उसके हम मोहताज हैं.
And we are in need of those.
तो इसलिए इल्म का सही होना ये बयान के सही होने के लिए जरूरी होता
है. That's why having the right knowledge is important and necessary for the bayan being right.
बाजी चीजें हमें चल पड़ी हैं बहुत सारी
ऐसी. And there are certain things that we have kind of.
और हमारे साथी जो है ना मुतवज्जे करते रहते हैं बहुत मर्तबा.
And others keep reminding us about those things.
उस पर ध्यान देने की जरूरत
है. We need to take attention to pay attention to
that. हमारी तरक्की जो है ना वो किस क्या मुराद है. हमार जब हम अपनी तरक्की चाहते हैं इससे क्या मुराद होता है.
So when we desire our progress, what does it mean?
इंसान की तरक्की क्या है.
What is the progress of human being?
उसके ईमान की तरक्की है सब जानते हैं.
There's a progress or increase in his iman, everybody knows this.
उसके आमाल की तरक्की है.
And progress in his amal.
लेकिन हम इसको भूलते हैं कि ईमान की तरक्की में क्या चीज असल है.
And then we forget that in the increase and progress of iman, what is the actual thing?
आमाल की तरक्की में असल चीज क्या है.
What is the actual thing in the progress of amal?
ईमान की तरक्की आमाल की तरक्की की अलामत और उसकी दलील जो है वो अखलाक की तहजीब है.
He says that the sign or the symptom of the progress of iman and amal is the progress in the character and akhlaq.
फल दरख्त की तरक्की क्या है. फल आना है.
What is the progress of a tree? That it bears fruits.
और अगर फल नहीं आया दरख्त को तो पता चला कि ये तो बंजर है, ये तो अकीम है, बांझ है.
He says if you don't see a fruit coming on a tree, that means that this tree is not going to bear the fruits.
उसको आप तरक्की याफ्ता दरख्त नहीं कहते.
You don't say that this is a good tree.
उसको तो काट दिया जाता है. इसको हटाओ दूसरे को लगाओ यहाँ.
He says that take it away and put some other tree here.
तो अखलाक फल है.
The character is like fruits.
मगर उसके अंदर भी एक बात है.
And there is one other thing in that.
तो अखलाक क्या है, अखलाक की हकीकत क्या है.
What is the reality of अखलाक?
ये असल समझ इस पे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है.
This is that we need to keep thinking about.
और दिमाग लगाने से साथ साथ मेहनत करने की जरूरत है.
And not only thinking, but we also need to make effort.
और बहुत मेहनत करना पड़ता है.
We need to make a lot of effort on this.
और ये मतलब है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का कि बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं मकारिम अल अखलाक के इत्माम के लिए भेजा गया हूँ.
And this is the meaning of the saying of Rasulullah, the close meaning of it, that I have been sent to complete the best of akhlaq.
मुतम्मिम अल अखलाक के लिए मैं भेजा गया हूँ. तो आप तो हम सब जानते हैं कि आप के लिए भेजे गए, मगर आप ये क्यों फरमा रहे हैं. ये इसीलिए फरमा रहे हैं कि वो जिस जिसके लिए भेजे गए हैं ना आखिर में जाके एंड ये है.
He says, we all know that why Rasulullah s.a.w. has been sent, but why Rasulullah s.a.w. is saying about this character and completion of character, that everything else that Rasulullah s.a.w. has been sent for, the end result of that is beautification of the character.
इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वस्फ कुरान पाक में खुसूसियत से बयान किया गया, कसम का के फरमा वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप बड़े अखलाक पर हैं, अखलाक के बुलंद मियार पर आप हैं.
That's why one of the attributes of characteristics of Rasulullah s.a.w. that have been mentioned in the Quran after swearing, Allah s.a.w. says the close meaning of fish, that you are at the pinnacle and peak of the best of the character.
तो ये जो अखलाक की बुलंदी जो होती है, मकारिमुल अखलाक जो होते हैं, इसमें हमारे अपने जहन में कुछ चीजें चली हुई होती हैं, उनमें से ये बात चल गई कि अखलाक से मुराद है लोगों के साथ बर्ताव में नरमी, खुशखुल्की.
And then when we talk about this height of character, betterment of character, one of the things that I've seen in the common, lay is that we interact with the people in a good manner and be soft with them.
ये तो बड़े अच्छे अखलाक का आदमी है. क्या मतलब लेते हैं हम इसका.
What do we mean by this?
कि बात करता है तो नरमी से करता है.
When he talks softly.
मुस्कुराता है.
He smiles.
चाय को पूछता है.
He asks for the tea and other things.
हमारे पास अच्छे अखलाक यही है.
We thought that this is the good akhlaq in front of us.
और अगर लोगों के साथ मामलात अच्छे हो गए तो फिर मामलात का अच्छा हो जाता है वो.
And when he has good dealings with the people, then he is.
मालूम हुआ कि अखलाक के बारे में खुद हम क्लियर नहीं है.
From this what we can say is we are not clear about what the good akhlaq are.
क्योंकि ये अखलाक अच्छे अखलाक का मेयार नहीं होता ये.
Because this is not the level of good character.
अच्छे अखलाक की बातों में उसके नतीजों में से उसके असरात में से एक दो असर है ये खाली.
This is just one or two symptoms out of those good akhlaq.
हमको अखलाक की तारीफ के नहीं पता है. अखलाक खुल्क की जमा है. खुल्क जमा और खुल्क अलग है, खल्क अलग है. हमारे जाहिरी बनावट का नाम खल्क है. हमारे अंदरूनी बनावट का नाम खुल्क है. इसलिए अखलाक की हकीकत में अंदर के औसाफ हैं.
That's why the reality of akhlaq is the beautification of characters inside.
अंदर की बनावट में दो चीजें बुनियादी हैं.
The beautification of inside, there are two foundational things.
आग, पानी, मिट्टी, हवा के असरात.
This is we have fire and air and water and earth, the effects of this inside.
ये हमारा जिस्म जिससे मुरक्कब हो जाने के बाद में उसके असरात जो अंदर उतरे.
This is basically how our body has been created and the effects of this inside us.
जितना ये वो असर अंदर बाकी रहता है उतनी बदअखलाकी बाकी रहती है.
How much the effect of these things are inside, that is how much the person will have bad characters.
अखलाक की हकीकत ये लिखी है किताबों में.
This is the reality of akhlaq that's written in books.
और अल्लाह तबारक व तआला के अम्र से जो रूह आई है और अल्लाह पाक के अम्र से जो ईमान आता है उसके जो असरात होते हैं उसका नाम अच्छे अखलाक है.
And then the effect that comes in with the command of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the ruh, then they said that whatever the effect that have on internal of human being, that is a good akhlaq.
जितनी चीजें बद अखलाकी में आएंगी उसमें आप देखेंगे जैसे मिसलन गुस्सा है.
So then you will see that with many things which are bad characters, for example anger,
आग का असर है.
That is the effect of the fire.
आदमी में आग है.
The person inside has fire.
उसके असर में गुस्सा है.
And the effect of that is anger.
आदमी में मिट्टी है.
The person has mitti or earth in him.
उसके असर में तमा और लालच है.
And in him, in that there is effect of tamah and lalach, there is greed.
पानी का है असर, उसका भी असर है, फैला हुआ है ना, उसके अंदर भी हिर्स है.
There is effect of water as well, and because it is spreading, that's why it also has effect of greed.
हवा है, उसके असर में लंबी लंबी उड़ान है.
The air and the effect of this is flying very high or
something. यहाँ पे उड़ते रहते हैं आसमान.
He is here, but he'll be thinking about different.
ऐसी है चपिद्दी चपिद्दी का शोरबा है, समझते हैं अपने को बड़ा पहलवान.
Reality is a very small person, but he feels like he is a very great one, as a very big one.
जितने जो है ना रज़ाइल नफ्स कहलाते हैं वो बदअखलाकी हैं.
This is that all the bad things are habits of the nafs. These are all the bad characters.
और नफ्स असल में उसी तबीयत के मजमूए का नाम है.
And nafs is basically a combination of these things.
हमारे आग, पानी, मिट्टी, हवा से जो चीज बनती है उसको नफ्स का. इसी वजह से मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे नफ्स उसका बड़ा होता है.
This is the combination of fire and water and earth and air. This is what is nafs. And Maulana Mustafa Panpuri Rahmatullah used to say, as the kid grows up, similarly the nafs also grows up.
और जैसे जैसे आदमी इस मादी दुनिया की लज्जतों में बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसके नफ्स के अंदर मोटापना आता रहता है.
As a person gets involved in the pleasure of
नफ्स मोटा होता है. इसलिए सूफिया जो है ना पहले जब तहजीब नफ्स की तरफ लाते थे, तरबियत करते थे इंसानों की, वो क्या करते थे, ख्वाहिशात में मारते थे.
So that's why Sufia, rahimahullah, when they used to do the therapy of a person, the thing that they used to do was they used to cut down the desires.
हजरत साहबा में इसका बड़ा रिवाज था.
हज़रत
सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के बारे में लिखा है कि वो 6-6 दिन तक भूखे रहने के आदि हो गए थे. जो आदमी 6 दिन तक भूखा रहने का आदि होगा उसको 6 दिन तक पेशाब पकाने का भी तकाजा नहीं होगा. अब अंदाजा फरमाइए कितना मुजाहिदा करने वाले लोग थे.
हज़रत
अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे थे.
हज़रत
उमर मिल गए रास्ते में.
कहने
के कहाँ जा रहे हो.
कहने
के गोश्त लाने जा रहा
हूँ.
हज़रत उमर को गुस्सा आ गया. गोश्त लाने जा रहे,
गोश्त
लाने जा रहे, गोश्त लाने जा रहे. हज़रत उमर इब्ने उमर फरमाते हैं कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं अफसोस करने लगा कि मेरे हाथ में ये पैसे आए क्यों, जिसकी वजह से मुझे अब्बा की ये बात सुननी पड़ी.
हज़रत
उमर ने फरमाया कि जब गोश्त खाने को दिल बोलेगा निकल जाओगे गोश्त खरीदने. जो हयात सहाबा में जो वाकयात लिखे हुए होते हैं ना उसकी वजह उसमें जो उसूल है वो यूं निकलते हैं बाहर. कि किस तरह से वो लोग कंट्रोल करते थे अपने को ताकि रज़ाइल नफ्स पर कंट्रोल हो सके.
हाँ,
अखलाक की तहजीब जो है वो ईमान को कामिल करती है
and the goodness of the akhlaq that completes the iman.
और ईमान के कमाल में अपनी तरक्की ये बात यहाँ से थी ना वो
and that having the kamal and the purification of the iman is the to our progress. This is where the progress starts.
तो जो रज़ाइल नफ्स हैं उनका जायजा लेना
that's why all those bad things of the nafs we need to keep checking them.
और जायजा लेते रहना
and we need to keep checking them to them.
ताली बड़ापन है
does it have this old part the feeling of being big.
यह भी उसी का असर है, यह भी आग का असर है. शैतान ने यही कहा था कि खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, मुझे आपने आग से बनाया है, मैं बड़ा हूँ, ऊपर जाती है आग, और ये इसको मिट्टी से बनाया वो नीचे जाती है.
And this is what Shaitan has said, the closed meaning of it says, I have been created from fire, fire goes up, and this person has been made of earth and mud, which is lower there.
और बड़ेपन की खसूसियत ये है कि ये जैसे ये अच्छी चीजों से भी बहुत जल्दी पैदा होती है.
And then this having that feeling that I'm big and I'm something, so this also gets created through the good things.
आप बोलेंगे कि अच्छी चीज से खराब चीज कैसा बनती है?
And you may say that how are you going to get a bad thing from these good things?
तो ये ऐसे ही बनती है जैसे अंगूर से शराब बनती है.
This is very similar to making wine from your from grapes.
अंगूर इतनी अच्छी चीज है.
अंगूर the grapes are good things.
हमारे पास एक शेख यानी विदेती शेख था.
There was a
bidati
sheikh in a
place. और जो है ना नमाज नहीं पढ़ता था.
He never used to pray salah.
और शराब भी नहीं, शराब खूब पीता था.
And he used to drink wine a lot.
और उलमा पे एतराज करता था.
And he used to have objections on
उलमा. तो कहने लगा कि ये मौलवी लोग जो है ना ये गोलियों और कैप्सूलों को जायज बोलते हैं और उसके शरबत को हराम बोलते हैं.
He said that this mawlvis, the tablets and the capsules, he said they are haram, but halal. He said halal, and but the juice itself.
उसका मतलब ये था कि अंगूर को जायज बोलते हैं और उसके शोरबे को जो है ना हराम बोलते हैं.
Basically his meaning was you say the grapes are halal but the wine which comes out of it which is the juice of the grapes you say it is haram.
उनको ये नहीं मालूम है कि अच्छी चीज से खराब चीज बनती है.
They didn't know that from the good things bad things sometimes come into existence.
बल्कि अदर शेख अल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अच्छी चीज से जब खराब चीज बनती है तो वो खराब चीज में भी खराब चीज बनती है, खराब में उसकी क्वालिटी बड़ी भी होती है. और फरमा सादे खाने की जो गिलाजत होती है उसमें उतनी बदबू नहीं होती जितनी बिरयानी की गिलाजत में होती
है.
तो इसका मतलब ये होता है कि इस पर बहुत निगरानी रखनी पड़ती है.
That's why we need to always keep check on this.
तबलीग में बहुत दिन से लगे हुए हैं.
We are in the tabligh for a long time.
अच्छा काम है बुरा काम है?
Is it good work or bad work?
और उसके बाद में ये बन गया अंदर कि मैं तो बहुत दिन से लगा हुआ हूँ.
And after this come into us the pride that I've been in this work.
मेरी एक हैसियत है.
I have a position.
मेरा एक मकाम है.
I have a position in this.
मुझसे पूछ के होना चाहिए काम.
And everything needs to happen with my authority.
अच्छा ये डिसाइड हो गया मुझसे पूछा ही नहीं.
And this has been decided and you didn't ask me.
ये क्या निकला इस तवील मुद्दत से क्या निकल रहा है?
And from being attached to the work, what is now coming out?
शराब पीने वाला इससे बेहतर है.
He says that the person who drinks wine is much better than this.
हुब्बे जाह जो जाह जाह की जो मोहब्बत है ताल्ली जो है ना इससे शराब की बुराई कम है.
He says the person who has the desire of being big or prominent, the drinking of wine, the sin of that is less than this.
कितनी फनाइयत आना चाहिए ये है ईमान.
Now how much we should be destroying ourselves and lowering ourselves.
कितने तवाज़ो आना चाहिए वो है ईमान.
And how much तवाज़ो and we should have this is what iman.
जिक्र करते हैं बहुत जिक्र करते हैं बहुत जिक्र करते हैं अब आ गया कि मैं तो जिक्र करने वाला हूँ.
The person does lot of zikr. Now he feels that I'm a person who makes lot of.
पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अब आ गया दिमाग में कि मैं सब बड़ा आलिम हूँ.
They say that a person who teaches and have this thing now in his brain that I'm a very good alim.
बयान करते हैं बताओ मेरे से अच्छा तो कोई बयान करने वाला नहीं है. इससे जो खराबी वजूद में आ रही है उस पर हम अपना ध्यान नहीं देते कि कहीं इससे कोई मेरे अखलाक में मेरे बातिन में गड़बड़ तो नहीं हो जा रही है.
He says that the bad things are coming to existence because of these things. We are not keeping in mind or we are not keeping a check on them that if there is something bad being inculcated and how my progress is being held back because of this.
इस बात को समझाने के वास्ते एक बहुत अजीब वाकया एक बुजुर्ग के साथ पेश आया. बुजुर्गों के यानी वाकयात से बात अच्छा जहन में बैठती है.
And this is because we'll be able to understand things better.
یہ بھی ایک اصلاح کی چیز ہے تھوڑی, بتاتا ہوں میں.
And this is also something of rectification.
وہ ہے کہ ہم واقعات بیان کرنا نامناسب سمجھتے ہیں.
And sometimes we feel like saying the incidents is not
بھئی اصلی right. قرآن بیان کرو, اصلی حدیث بیان کرو, بس ختم.
Just say the right hadith and right Quran and that's enough.
یہ بزرگوں کے قصے کیا لے کے بیٹھے ہوئے تھے.
And what are you talking about this elder stories of elders?
بزرگوں کے فرضی قصے نہیں سنانا. اور ایسے نہیں سنا نا کہ جو جس کی توضیح کرنا لوگوں کے لیے مشکل پڑ جائے. ورنہ واقعات سے جو بات ذہن نشین ہو سکتی ہے وہ سمپل بیان سے نہیں ہو سکتی.
Otherwise, the thing that gets into understanding with the incidents, you typically will not have it through the regular.
قرآن پاک میں اس لیے بیان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بہت ہے.
That's why if you look into the Quran, there's a lot of description detail about the incidents of prophets.
قوموں کے واقعات کا ہے.
There are stories of the previous nations.
افراد کے واقعات کا ہے.
Stories about the peoples.
قارون کا ذکر ہے.
There's a description of Qarun.
نمرود کا ذکر ہے.
There's a description of Namrud.
افراد کا بھی ذکر بہت ہے نا.
There are also a lot of description about the people in the Quran.
بنی اسرائیل کے واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عابدوں کے بہت بیان کیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has mentioned about the incidents of the abids of بنی اسرائیل a lot.
اور اسی وجہ سے حضور نے فرمایا حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, بنی اسرائیل سے نقل کرو حرج کی بات نہیں ہے.
That's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that you narrate from the stories of بنی اسرائیل, there is no حرج in it.
اور بنی اسرائیل کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اسرائیلی باتیں ہوتی ہیں اس میں لا نصدق ولا نکذب, نہ تصدیق کر سکتے نہ تکذیب, صحیح ایسا بھی نہیں معلوم غلط ایسا بھی نہیں معلوم.
And this is one of the things of the stories of Bani Israel that neither you can confirm them neither you can deny them.
اس لیے ان کی باتوں کو نقل نہیں کرنے کو علماء فرماتے ہیں.
That's why علماء said they're not to narrate those incidents.
ان دونوں میں فرق ہے.
There is a difference in these two things.
فرق یہ ہے کہ جو واقعات ہیں جس میں سبق آمیز پہلو پایا جاتا ہے وہ بیان کرنے کی حضور نے ترغیب دی ہے.
And the difference is that wherever there are stories of Bani Israel where there is lessons to be learned,
اور جو بنی اسرائیل کی باتیں ایسی ہیں جو مفروضات پر مشتمل ہیں, جو مسائل میں دخل دینے والی بات ہو جاتی ہیں, عقائد میں دخل دینے والی بات ہو جاتی ہیں, جن کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے, ان سے احتیاط کرنا چاہیے.
And then the second thing is those stories of Bani Israel and incidences which interfere with aqaid and maamilat and amal, that's where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that if we don't know exactly what is right, so not to say that.
اسی طرح بزرگوں کے واقعات ہیں.
And same thing like stories of
اگر بزرگوں کے واقعات بیان کرنا ہوتا تو قرآن پاک میں ہوتے.
لوگ کہتے ہیں حدیث
میں ہوتے.
And they would have been in حدیث.
بولنے والے یہی نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ بزرگ کب بنے, حدیث پہ عمل کرنے کے بعد تو بنے, قرآن پہ عمل کرنے کے بعد تو بنے.
The people, what they don't understand is these people became elders and pious predecessors only after they did the amal of Quran and Hadith.
تو ان کو کیسے قرآن حدیث میں سنایا جائے گا, بیان کیا جاتا؟
How are you going to describe them in Quran and Hadith?
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے وہ ان کے زمانے کی کتاب پر عمل کرنے والے اور ان کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے قصے بیان کیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has talked about the incidents of those people who were acting on the book of and the sayings of the Nabi of their time.
بنی اسرائیل کے واقعات حضور نے بیان کیے نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has said the Bani Israel incident.
وہ تین آدمیوں کا قصہ بیان نہیں فرمایا جو غار کے اندر گھس گئے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has talked about three people who got captured.
ایسے بہت ہیں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے. And there are many stories of رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم. فضائل صدقات میں نہیں ہے وہ بیان کہ ایک آدمی جا رہا تھا ٹیلے کے اوپر سے, مٹی کے ٹیلے پر سے گزر رہا تھا, اس نے کہا قحط کے زمانے میں اگر میرے پاس آٹا ہوتا میں اتنا سارا بانٹ دیتا. اس وقت کے نبی کو وحی آئی کہ اس کو بولو کہ سب کا ثواب لکھ دیا گیا. یہ قصہ بیان فرمایا نہیں حضور نے.
This mentioned in Fadhail Ahmad about Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم saying a person who during the time of famine he was walking by a sand dune and he looked at it and made intention that therefore there would have been gain like this much I would have given, and the Nabi was told in the wahi to go and tell him that he got the reward for. These are the stories that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم has mentioned.
حضرت مریم کا قصہ قرآن پاک میں نام کے ساتھ ہے. امراۃ فرعون کا قصہ نام کے ساتھ ہے, امراۃ کے نام سے فرعون کی بیوی کا قصہ ہے. اصحاب کہف کا قصہ موجود ہے قرآن پاک میں. کون ہے یہ اصحاب کہف؟ عیسائی تو ہیں. یہ وہ زمانے کے اللہ والے تھے. اصحاب اخدود کا قصہ قرآن پاک میں. وہ اس زمانے کے, وہ بھی کرسچن ہی ہیں, اس زمانے کے اولیاء اللہ ہیں. اس وقت کے نبی کے فالوور تھے, سچی کتاب کو پال کرنے والے تھے. हुजूर अल्लाह ने भी बयान किया, हुजूर ने भी बयान किए.
तो
पिछली किताबों पर ईमान रखने वाले और पिछले नबियों पर ईमान रखने वाले पायस पीपल के किस्से जब अल्लाह रसूल ने बयान किए तो कुरान पाक पर और हदीस पर अमल करने वाले और ईमान रखने वाले अल्लाह वालों के किस्से क्यों नहीं बयान किए जाएंगे? जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम हैं उस तरह के लोगों में इल्म की कमी है तो वो इस पर भी तनकीद करते हैं. उनके तनकीद करने की वजह से हम डर जाते हैं.
Because of their objections, we get in trouble.
ये थोड़ी बात सही है. वाकयात के जरिए से बात जहन नशीन होती है. अगर उनके सामने बयान करने की नौबत आई और आप किसी मसले से गड़बड़ नहीं होने के लिए इंतजाम एहतियातन आप एहतियात बरतना चाहें तो जरूर बरते हैं आप, लेकिन जहन इससे फारिग होना चाहिए, जहन में इसकी इसलाह हो जानी चाहिए कि हकीकत इसकी क्या है.
But we need to have very clarity in mind that what is the actual thing behind.
और मौका पड़ने पर अपनों में बयान भी किया जा सकता है उसको.
And when there is a need when you are talking about yourself, then you can say these stories as well.
हाँ, उसमें एहतियात जरूर चाहिए.
And we need to be careful in them.
बेएहतियाती से गड़बड़ होती है.
We should always be careful. If you're not careful, then it will make.
बड़े वाकयात पेश आए हैं अपने बुजुर्गों में.
There are stories and incidents that happened.
तो कुरान पे अमल करने वाले लोगों के वाकयात हैं, मामूली बात थोड़ी.
These are the people who used to do the amal.
हदीस पर अमल करने वालों के वाकयात हैं, मामूली बात थोड़ी.
They used to do the amal.
अपने बातिन का जिला रूहानियत अपनी साफ करने वालों के वाकयात हैं. बड़े वाकयात पेश आए. खैर, ये बात मुझे याद आ गई कि मैं एक बुजुर्ग का किस्सा सुनाना चाह रहा था. और बुजुर्ग का किस्सा मुझे इस बात पे याद आ गया था कि अपने आप अपनी जो ताली होती है, बड़ापन होता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की कैसे हिफाजत और तरबियत करते हैं. और उससे हमें यह समझना था कि वो चीज कितनी बुरी होगी, उसको उसको समझने में मदद मिलती
है.
एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है शाह अब्दुल रहीम विलायती. वो जा रहे थे.
He was going my way.
और जो खेत होते हैं एग्रीकल्चर के, उसके दरमियान छोटे रास्ते बने हुए थे, उसको मुंडेर कहते हैं, उस पे से वो जा रहे थे. दोनों तरफ पानी भरा हुआ था और उसमें कीचड़ था. और वो जो जिस पर चलते हैं वो एक ही इतना था कि एक ही आदमी जा सकता था. अगर उधर से कोई आए तो मुमकिन नहीं था कि दोनों गुजर जाएं. या तो दोनों में से एक उतरे नीचे, या एक पीछे जाए. ये गुजर रहे थे इधर से. एक कुत्ता उधर से आ रहा था. बीच रास्ते में आके दोनों रुक गए. कुत्ता भी नीचे नहीं उतर रहा था और ये भी नीचे नहीं उतर रहे थे. इनके दिल में ख्याल आया कि उतरूंगा मैं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे. मुझे नमाज पढ़ना होता है, ये सब धोना पड़ेगा, ये लंबा काम है, ये कुत्ता है, इसमें नमाज रोजा कुछ नहीं है. भाई ये उतरे. लिखा है कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को जुबान दे दी. उसने कहा कि हजरत मैं नीचे उतर सकता हूँ और मुझ पर नमाज नहीं है और मुझे ऐसी गंदगियों का फर्क भी नहीं पड़ता. लेकिन एक बात है, अगर आप इस वजह से नहीं उतर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं खराब हूँ, फरमाया कि ये ऐसा कीचड़ है कि अगर सात समंदर से भी धोएंगे तो नहीं साफ होगा. और ये ऐसा कीचड़ है कि तीन पानी से धोओगे तो साफ हो जाएगा. अब आप देख लीजिए, आप जैसा बोले वैसे मैं करता
हूँ.
बस जैसे ही वो कुत्ते ने कहा, ये कूद गए नीचे. रात में जब सोए, उन्होंने ख्वाब देखा. उनको ख्वाब में किसी ने बताया कि तुम जानते हो कि तुम्हारी ये तरबियत कुत्ते के जरिए से क्यों की गई।
उन्होंने
कहा कि नहीं।
He said, no, I don't know.
उन्होंने कहा कि एक मर्तबा एक कुत्ता खुजली से परेशान था बहुत जमाना पहले, और वो खा पी नहीं सक रहा था, बहुत प्यासा हो रहा था। तुम उस कुत्ते को उठा के घर ले गए थे, दवा दारू किया था, उसके जिस्म पे जख्म पे मरहम लगाया था, पानी पिलाया था, जब वो अच्छा हो गया तो छोड़ दिया था। अल्लाह तबारक व तआला को वो अमल कबूल हुआ, तो उसकी बरकत से इसी कुत्ते के जरिए से ये नेकी करा के तुम्हारी हिफाजत की गई।
But you took the dog to your home and you took care of it, you put some ointment on it, and then after the dog became well, then you left it out. He says that that good deed that you have done, because of that good deed, through this other dog, Allah subhanahu wa ta'ala has given you this tarbiyah, and through this Allah has saved you.
इससे हमें क्या सबक मिलता है? वो ये कि इतना ख्याल आ जाना अपने बारे में, इतना गंदा है ये बताया गया।
He says that what is the lesson that we derive from this? That having even this little, you know, thinking in us that we are something, and this is how dangerous it is, and it needs to be corrected.
हम अंदाजा कर सकते हैं कि हम कितने मुहज़्ज़ब हैं।
You just can imagine how civilized we are.
हमारे अखलाक की तहजीब कितनी हुई,
how civilized our characters are and how they are rectified.
क्योंकि जितने अखलाक की तहजीब हुई उतना ईमान आया।
That how better our character is, that much iman will have.
तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ईमान आया।
Then we can see that how much iman we have.
इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत की जरूरत है। उलमा ने फरमाया है कि अगर तहजीब अखलाक न हो तो एक इंच बंदा अल्लाह से करीब नहीं होता। हम अपना अल्लाह ताला की तौफीक से अपने जाहिर को आरास्ता करने के अल्लाह ने तौफीक दे दी, सुन्नत से आरास्ता हो गए, लिबास पे फर्क आ गया, बहुत जाहिरी तौर पर माशाल्लाह पाबंदी आ गई, अब हम मुतमईन होने लगे हैं।
We have started adopting sunnah and our dress and other rectification. Alhamdulillah, we are having this rectification. Now we are contented with this and we are good.
लेकिन कितनी बड़ी गलती और भूल में हम पड़ गए।
Just imagine that how big forgetfulness we are.
और अगर खुदा ना खास्ता, हजार बार खुदा ना खास्ता, इसी गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ अल्लाह के पास हम चले गए, क्या बनेगा अपना?
Just imagine that may Allah forbid that if we go to Allah subhanahu wa ta'ala with this understanding and misunderstanding, what will happen to us?
हमारी मिसाल क्या है? मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ, बुरा मत मानना। वो मिसाल असल मुझ पे अप्लाई होती
है।
बाहर से एक बेहतरीन कवर है,
there is a good, beautiful cover outside.
चमक रहा है,
it's shining.
गोल्डन है,
it's golden.
ये एकदम सिल्वर के जैसा चमक रहा है।
oh, it's like silver and shining.
देखने से पता चलेगा कि यार जबरदस्त कोई चीज है, उस पर मैंने फूल वूल भी बांध दिया है, उसको ऐसा रैप किया, गिफ्ट देने के वास्ते रैप किया है, उस पर फूल वूल बत्ती उत्ती अच्छी बांधी है। और अंदर मैंने गोबर रख दिया है, अब ले जाके दे रहे किसी बड़े आदमी, वो भी बोलेगा यार ये तो बड़ा जबरदस्त गिफ्ट आया है। वो बेचारा घर में ले आके खोला उसको,
and he took it to his house and opened it.
कितनी मोटी गाली देगा।
how much he'll be cursing you?
उसके मुंह में नहीं आए उतनी मोटी गाली देगा। अच्छा ये तो वो है कि उसको पता नहीं है कि मैंने इसमें लपटा क्या है।
He said that this is the situation where the person when he got it, he didn't know what is inside.
और अगर उसको पता हो कि मैंने इसमें गिलाजत लपटी है,
just imagine, by accepting, he knew what was inside.
फिर मैं ले आके दूं,
and then if I go and give it to him,
उसका तासुर क्या होगा?
Then just tell him what will be his reaction.
तो मैं अपना ईमान कहां ले जा रहा हूं?
Then just think that where am I taking my iman?
जो नहीं जानता उसके पास या जो जानता है उसके पास?
Am I taking it to somebody who doesn't know or am I taking it to somebody who knows?
मैं अपना बातिन कहां ले जा रहा हूं? जो नहीं जानता उसके पास, जो जानता उसके पास?
Where am I taking my inner self? Am I taking it to the person who knows or who doesn't know?
इस वजह से जब अंदर का गड़बड़ हो बाहर का अच्छा हो, उलमा ने ये जो फरमाया ना कि बंदा अल्लाह से बिल्कुल करीब नहीं होता, ये मतलब है बात का, क्योंकि उनके पास अंदर बाहर एक ही है। बल्कि अंदर ज्यादा अच्छा होना है।
اللهم
اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، حدیث شریف کی میں دعا سکھائی گئی، یا اللہ میرے اندر کو میرے باہر سے زیادہ اچھا کر دیجئے۔ واجعل علانیتی صالحا، میرا جو باہر ہے وہ بھی نیک کر دیجئے۔ کیا جامع دعا ہے، دیکھیے
آپ
کہ یا اللہ جو میرا اندر ہے وہ زیادہ اچھا کر دیجئے میرے باہر سے، اور جو میرا باہر ہے وہ بھی اچھا کر دیجئے، سیدھا صالح کر دیجئے وہ۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ، یا اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دو، مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دو اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دو۔ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، اور یہ حقیقت اصل میں تہذیب نفس کی ہے، اور یہ اصل میں یہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، اور اب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب کفر کے رشتے دار ہیں۔ کفر کے سارے رشتے دار رضائل کہلاتے ہیں، یہ لکھا انہوں نے، اور ایمان کے سارے رشتے دار فضائل کہلاتے ہیں، ایمان کے جتنی صفات ہیں وہ ایمان کے رشتے دار ہیں، اور کفر کے جتنے رشتے، برائی کے جتنے صورتیں ہیں وہ سب کفر کے رشتے دار ہیں۔ تو اس لیے اگر میں چاہتا، اگر دعوت والے ساتھی یہ چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی یہ ساتھی چاہتا ہے کہ دعوت میں لگا رہے، دعوت میں جیے، دعوت میں مرے، اللہ پاک کام کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھائے تاکہ اللہ کی نگاہوں میں اچھا ہو جاؤں اور اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو جاؤں، اور پھر مجھے اپنی ترقی کی فکر ہے تو مجھے اپنی ترقی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اس سے بحث نہیں، لیکن میں ہوں کیا اندر سے، اندر اور باہر دونوں سے۔
And it says that the thing that is very, very important for us is not so much about what people think about me, but I should be worried about myself, that what am I from inside.
تو اس لیے بہت محنت کرنا ہوتا ہے، تنہائیوں میں خوب ذکر کرنا ہوتا ہے، تنہائیوں میں معاملات کا پابند ہونا پڑتا ہے، تنہائیوں میں علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس پر سختی کرنا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے اندر اپنے کوڑے سے اپنی پنڈلی پہ مار رہے ہیں،
hitting himself with his own lash on his shins.
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لو کان عبادی نبیین لکان عمر کا شرف حاصل ہے، خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ الثانی، الخلیفۃ الثانی لرسول اللہ، آپ اندازہ
فرمائیے،
اپنے کو ہی مار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے منہ میں وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن انہذا اوردن الموارد، یہی تو مجھے تباہی کی جگہوں میں ڈالتی رہتی ہے، جو نہیں بولنا ہے وہ بلوا دیتی
ہے،
ضرورت سے زیادہ بلوا دیتی ہے، بے موقع کھل جاتی ہے، اس لیے کھینچ رہا ہوں اس کو بار بار۔ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت منہ میں پتھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے تاکہ زیادہ غیر ضروری بک بک نہ کرے، جب خاص مجبوری پیش آئے گی تو پتھر نکال کے بات کرے۔ کیا لوگ تھے یہ، اسی وجہ سے اللہ پاک کے ان کا مقام تھا۔ तो हर साथी अपनी तरक्की से मुराद ये होता है कि अपनी जात को फोकस करे। तन्हाई में कितनी मेहनत अपनी जात पे हो रही है। एक और बात याद आई, बहुत ही अजीब है, बज़ाहिर आपको समझ में ही नहीं आएगी। हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह भोपाल में, भोपाल के पुराणों के बयान में फरमाए थे, हजरत ने फरमाया कि तुम्हारी तरक्की इसमें है कि तुम्हारे अंदर यकसुई कितनी पैदा होगी। ऐसी बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगी कि अपन तो गश्त करने वाले लोग हैं। अपन तो फिरने वाले लोग हैं, हम तो गैदरिंग वाले लोग हैं, हम तो तकाजे तकाजे पे जमा होते रहते हैं, उमूमी तकाजे, खुसूसी तकाजे, उमूमी मुलाकात, खुसूसी मुलाकात, और जनाब कभी ओल्ड वर्कर का मशवरा हो रहा है, कभी न्यू वर्कर का मशवरा हो रहा है, मशवरे चलते रहते हैं हमारे तो। मगर वो ये फरमा रहे हैं, और वो जाहिर है कि तरबियत याफ्ता है, तो इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके उनके नहीं
है।
वो फरमा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी यकसुई पैदा हुई, कंसंट्रेशन अल्लाह की तरफ, तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ, उतनी तुम्हारे अंदर बनावट आई। यू आर बिल्ड,
तुम बने।
तो हमें कितनी मेहनत की जरूरत है मेरे बुजुर्गो, बहुत मेहनत चाहिए। और ये शोभा ऐसा है कि ये फील्ड ऐसी है कि जाहिर है कि हमको खुद भी आम उमूमी मौकों पर इसकी तरफ तवज्जो देने का मौका नहीं होता, और जो हमारे नए साथी हैं वो क्यों हमको मुतवज्जे करेंगे इधर।
So this field is such that we typically don't get an opportunity to talk about this in regular gatherings. And also those new brothers who are doing the work, how are they going to, you know, remind us about this?
Yes, side to wall hai jisme mujhe aapko baith ke aapas mein hi baat muzakara karna.
This is such a side that, you know, we need to sit amongst ourselves
aur tawajjuh karne ki zarurat hai is
par. And we need to concentrate think about this.
यही वजह है कि हमारी नमाजें इतने टाइम के, इतने टाइम के बावजूद भी उसमें कोई खुशोखुजू नहीं है। यही वजह है कि हमारे जिक्र में कोई जान नहीं है। हम जिक्र करते हैं लेकिन अजमत अल्लाह पाक की हमारे दिल में नहीं उतर रही होती, यकसुई नहीं है। इसकी मश्क करनी पड़ती है। इसको सूफिया की जुबान में कहते हैं खलवत दर अंजुमन, अंजुमन में तन्हा रहना।
दिस इज बेसिकली इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ योर सूफिया सेड दैट इन द गैदरिंग यू आर अलोन।
इसकी मश्क कराते थे पहले सूफिया,
दे यूज्ड टू मेक दिस एक्सरसाइज,
कि आप सबके बीच में होते थे लेकिन आप अपने अंदर अलग से तन्हा होते थे।
ही सेड दैट यू वुड बी सिटिंग इन द गैदरिंग बट यू वुड स्टिल अलोन इन योर
खलवत दर अंजुमन।
दिस बेसिकली बीइंग अलोन व्हाइल यू आर स्टिल सिटिंग इन द गैदरिंग।
उसको कहते हैं दस्त, दस्त बकार, दिल बयार, दिल यार में फंसा हुआ है और हाथ काम में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए कारोबार भी डिस्टर्ब नहीं करता, खरीदो फरोख डिस्टर्ब नहीं करती। ये कहां पर है? कुरान पाक में है ना ये? रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों हमें अपना मुजाहिदा बढ़ाना है, हमारे अपना खुरूज बढ़ाना है। हाँ, खुदा ना खास्ता इसका गलत मतलब मत लेना कि वो छोड़ो इधर लगो। यहाँ तक जो आए वो किससे आए? तो जब यहां तक आए तो इससे आगे भी जाना है तो उधर से ही जाना है। फर्क सिर्फ ये है कि इस साइड को याद रखना है, इस साइड पर वर्क जारी रखना है, तवज्जो देने की जरूरत है। ये वो साइड है कि यहाँ आने के बाद ही हम तवज्जो कर सकते थे। इससे पहले अगर इस साइड की तरफ ज्यादा तवज्जो दिलाए तो हम ये साइड से इधर आते ही नहीं थे। तो इसलिए बहुत सी चीजें आदमी को कंफ्यूज करती हैं। वहां पे भी सीधे रहना है तो इसलिए हमारा खुरूज बढ़ जाना है. खुरूज में इस पर मेहनत करना है कि मैं अकेले में तनहा कि मैं अकेला कितना हूँ. गश्त में मेहनत करना है कि मैं तनहा कितना हूँ. मखलूक में रहते हुए मुझे मेहनत करना है कि मैं खालिक के साथ कितना हूँ. हाँ, जिक्र कितना हो रहा मुझसे, उसकी पाबंदी कितनी हो रही मुझसे, तिलावत कितनी हो रही, कितना अल्लाह का खौफ कितना है, रुजू इल्लाह कितना है, मोहब्बत अल्लाह की कितनी अंदर पा रहा हूँ, डर कितना अपने अंदर आ रहा है, कितनी नाफरमानी से घबराहट हो रही है, नाफरमानी हो गई तो मैं कितना मछली पानी में से मछली निकालने की तरह तड़प रहा हूँ. ईमान वाला तो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता है कि अगर उससे कोई नाफरमानी हो जाए तो वो बस मुर्गे बिस्मिल हो जाता है. जैसे बिस्मिल्लाह बोल के मुर्गे को दुआ कर दिए बात छोड़ देता है ना तड़पने के लिए, वैसी तड़प उसमें आ जाती है. इसको आप समझना अगर चाहे तो यूं समझ सकते हैं कि किसी को किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत है.
If you want to understand this, you can understand from this if somebody loves a girl.
आखिरी दर्जे की मोहब्बत है.
He is the strongest love for her.
और उसके साथ में शादी होना तय हो रहा है.
And now he's getting decided that he'll get married with her.
और आपको बाल बाल में फर्क महसूस हो रहा है कि कहीं उसको बुरा लग जाए. क्योंकि अगर मैं जरा भी उसको बुरा लग गया तो वो डिसीजन चेंज हो जा सकता है. और ऐन ऐसे वक्त में कोई गड़बड़ आपसे हो जाए, आपकी कोई चैटिंग उसकी निगाह में आ जाए, उसको पता चल गया कि आप चीटिंग कर रहे हैं, क्या नौयत होती है बंदे, आदमी तड़पता है, उसको नींद नहीं आती, उसको खाना नहीं खाया जाता, उसको टेंशन हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है. ईमान वाले से गलती हो जाए तो ये कैफियत होना है. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, जब अल्लाह का जिक्र आता है तो दिल थर्राने लगते हैं उनके. तो ईमान ऐसे आना है. हाँ, मुझे ऐसा ईमान सीखना है, आपको भी ऐसा ईमान सीखना है, तो उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए खुरूज चाहिए, इसलिए अपनी कुर्बानी बढ़ना होगा. अगर हम 40 दिन के आदि हैं तो 4 महीने करना होगा. अगर हम 4 महीने के आदि हैं हर साल 4 महीने करना होगा. मेरे दोस्तों जिंदगी तो गुजर जाएगी, ये बीवी बच्चों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा. आज हम चले जाएंगे, वो कल अपनी दुनिया में लग जाएंगे. और यहाँ तो वो दुनिया में आंखों के सामने दिखा देते हैं कि हम आपको कितना चाहते हैं. तो वही रास्ते से बाला सफेद हो गए, हटो रास्ते से हमारे जाने दो. ये हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो हमारी बीवी डिस्टर्ब हो रही है. हमारी तो मोहब्बत का ये हाल है इस दुनिया में. उनके पीछे क्या अपनी आखिरत बर्बाद करनी है, उनकी तवज्जो करो उनकी तरफ. हमारी जो शरीय जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करना है, लेकिन उनकी खातिर से हम अपना कितना लॉस कर रहे हैं वो हम नहीं सोच रहे. हमें अपने मौला से लव लगानी है. हमने कल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा होना है, सहाबा के साथ खड़े होने का शर्फ लेना है, कम अज कम उनके कदमों में जगह मिल जाए, हमें फिरौन के साथ ना खड़ा कर दिया जाए, हामान के साथ ना खड़ा कर दिया जाए, जालिमीन और फुसाक और फुजार के साथ ना खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि वहां तो ऐलान हो जाएगा वमताज अलियोम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमो आज मिक्सिंग नहीं है. हाँ, यहाँ पे अमेरिकन पार्टी नहीं है,
मिक्स गैदरिंग
अलग हो जाओ, तो वहां नाफरमानों को अलग कर दिया जाएगा।
the people who are disobedient will be separated.
तो मैं जिस हालत में जाऊंगा, मैं तो इधर जाने का तो सवाल ही मुश्किल है।
तो
इसलिए मुझे अपना मुजाहिदा अपनी जिंदगी में बढ़ा लेना है।
That's why I need to keep increasing my sacrifice.
मेरा खुरूज बढ़ाना है। हालात मेरे जैसे भी हैं, हम में से हर एक इंडिविजुअल जानता है अपने हालात को। मेरे हालात को आप नहीं जानते, आपके हालात को मैं नहीं जानता, लेकिन हम दोनों के हालात को वो जानते हैं। और उनके लिए ही हमें कुछ करना है और उन्हीं से हमारा लेना देना है। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए मखलूक से खौफ तमा नहीं है। ईमान की हकीकत में यह है कि मखलूक का डर खत्म हो जाए और मखलूक से लालच खत्म हो जाए। किसी से कोई तवक्को नहीं रखना और किसी से मरूब होने की जरूरत नहीं। बाज मरतबा हालात की वजह से लिहाज रखना अलग चीज होती है, मगर दिल की कैफियत में खौफ तमा नहीं होना है। क्योंकि खौफ तमा का मर्जा उधर है, खौफ उनसे मुताल्लिक है और रजा भी उनसे मुताल्लिक है। इसीलिए ईमान बैनल खौफ ही वर रजा, ईमान खौफ और रजा के दरमियान है। इसलिए मुजाहिदे की जरूरत है। और जब हम मुजाहिदे पे आएंगे पुराने काम करने वाले,
when the old workers come on to sacrifice,
और ये खुरूज को अपना पाबंदी से खुरूज में आ जाएंगे, तो बाद में आने वाले जो होते हैं ना, वो इन्हीं को देख के चलते हैं। जो लोग हमारी दूसरी सबके कहलाते हैं, तीसरी सबके कहलाते हैं, उनका तो इसी पर होता है कि पहली वाले क्या कर रहे हैं। परिंदों के गौल को आप देखिए, सामने वाली जो सफ है उसी को देख के पीछे वाले आते रहते हैं।
Birds which are flying behind them, they follow.
सामने रिवर आ गया,
if there is a river in the front,
पहली सफ ने लैंड कर दिया अपने
आप, the first line lands itself.
आप देखेंगे कि पूरे बैठ जाएंगे,
and you'll see everybody coming from the behind, they will also land themselves.
सामने रिवर आ गया,
if there is a river in front,
पहली सफ आगे बढ़ गई,
the first line goes forward.
आप नहीं देखेंगे कि पीछे वाले नीचे उतर गए,
you will not see the people coming behind.
बोलेंगे कि नहीं, इसको पार करना है,
they will say, no, we have to cross.
चाहे छोटा रिवर हो चाहे बड़ा रिवर,
there is a small river or big river.
वो नहीं ठहरते वहां पे,
they will not stop there.
तो ये एक उसूल है, ये
this is a principle.
कि अगर हम काम करते करते रुक जाएंगे, पीछे वालों को ये मैसेज मिल जाता है कि काम करते करते रुक जाना है, अगर हम काम करते करते चलते रहेंगे तो पता चलता है पीछे वालों को कि चलते रहना है। अच्छा, पीछे वालों की एक कमजोरी है, वो ये है कि वो आगे वालों की कमजोरी को नहीं जानते। आप पीछे वालों को ये नहीं समझा सकते कि हम इसलिए रुक गए हैं कि हमारे घुटने में दर्द हो गया, क्योंकि उनके घुटने में दर्द नहीं है। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमारे रुकने के कुछ आजार हो सकते हैं, उनको नहीं मालूम रहती है, इसलिए सूफिया ने लिखा है कि सामने वाले के घुटनों में दर्द होने के बावजूद भी उसको बर्दाश्त करते हुए उसको चलना पड़ता है। उसको आगे चलते रहना पड़ेगा, चलाते रहना होगा अपने आप। इसका मुजाहिदा उसी में है, क्योंकि वो जो मुजाहिदा कर रहे हैं उससे तो हम पार हो गए, हमारा अब वो मुजाहिदा नहीं है। हमारे मुजाहिदे की काइंड बदल गई, तो इसलिए हमको चलते रहना होगा, अपनी बीमारी में भी चलते रहना होगा, अपनी रुकावटों में भी चलते रहना होगा, अपने हालात में भी चलते रहना होगा। अगर हम चाहते हैं कि काम बढ़ता रहे, पीछे वाले आगे हमारी जगह लेते रहे और काम फैलता रहे, जरूरी है कि अगले वालों को रुकना नहीं, क्योंकि जैसे हम करेंगे वो वैसे ही करेंगे। और अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहे तो काम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये अल्लाह की आदत है, ये अल्लाह की सुन्नत है। हम ये चाहते हैं ना काम बढ़े,
इसकी
सूरत क्या है? ये काम करें, दुकानदार ये चाहता है कि दुकान बढ़े,
the person who owns the shop thinks that he should expand his business.
दुकान चले,
he says that the business should go.
उसकी शक्ल क्या है?
What is the shape of this?
ये दुकान पे बैठे,
he keep on sitting,
दुकान चलाए,
and sit on the shop and run,
दुकान बढ़ाए,
and he increase the shop.
तो दुकान के बढ़ने की शक्ल यही है कि उसको काम पे जाना होगा,
and that the way that the business can expand, he has to go and take care of
और जितना वो जाएगा वो खुद भी बढ़ेगा.
How much he invests himself, even he will grow.
इसी वजह से धीरे धीरे पैसे बढ़ते रहते आदमी के, थोड़े दिन पहले छोटी सी दुकान थी, अब उसने दुकान भी बड़ी कर ली और घर भी जाती कर लिया. और थोड़े दिन के बाद में एक नया घर भी बन गया. जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे आदमी भी बढ़ता है. तो ये जो दो मरकजी नुकते हैं कि मेरी तरक्की हो और काम की तरक्की हो, इसका सीक्रेट ये है कि मैं ना रुकूं और मैं मेहनत में लगा रहूं.
This is the point where we basically find our own progress and the progress of the work, the secret behind us. I do not hold myself back. I do not stop. I keep continuing the work.
इसलिए अल्लाह की जात के ऊपर नजर करना है. अल्लाह पे भरोसा करना है. अल्लाह पे तवक्कुल करना है. अल्लाह से दुआ करना है और अल्लाह से माफी मांगनी है, क्योंकि माफी के जरिए से जितनी हमारी रुकावटें हैं वो दूर होती हैं. और दुआ तो हमारी हाजतों का हल है. और भरोसा करने से अल्लाह पाक खुद मैनेज करते हैं. قرآن پاک ہے. من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. جو بھروسہ کرتا ہے اللہ نمٹ لیتا ہے, اللہ کافی ہے اس کو. ہم اپنے امور میں اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو مینجمنٹ اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور ایک جگہ تو اللہ نے پوچھا مسلمانوں سے, علیہ اللہ بھی کافی نام تھا, کیا اللہ بس نہیں ہے اپنے بندے کو؟ اگر اللہ کسی کو بس نہیں ہے تو پھر کس سے بس ہو, کون بس ہوگا اس
کو؟
بھروسہ کرنا ہے میرے دوست
اللہ,
اور تھوڑا سا ہمت سے کام لینا. ہماری ساری رکاوٹوں کا حل ہمت میں
ہے.
ہم پست ہو گئے, ڈپریس ہو گئے, ہم ہمت نہیں کر پا رہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے, صحت ساتھ نہیں دینے کی وجہ سے, کام بڑھ جانے کی وجہ سے. جہاں ہم جاتے ہیں وہاں جو تکلیفیں پیش آتی ہیں ان تکلیفوں سے ڈر کے, کیا جائیں گے یار وہاں پہ کھانے کی پریشانی ہے, وہاں پہ قیام کی پریشانی ہے, وہاں پہ باتھ روم کی پریشانی ہے, وہاں پہ دوا دارو سب شام میں جو ہے نا خود لینا پڑتا ہے, یہاں پہ کوئی دے دیتا ہے, یہاں پہ مزے میں ہے اور یہاں پہ بھی دن کی بات کر لیں گے, یہاں پہ تھوڑا ذکر فکر کر لیں گے. کیسے آزار ہیں یہ؟ ایسے چھوٹے چھوٹے آزار ہیں یہ جو ہماری پست ہمتی کو بتا رہے ہیں. پست ہمتی جو ہے نا یہ جبنت کا حصہ ہے, بزدلی کا حصہ ہے. اور جبنت شجاعت کے مقابلے میں ہے, شجاعت بہادری کو کہتے ہیں. اور بزدل جو ہوتا ہے اس میں بہادری نہیں ہوتی. تو انسان ایمان کی صفات میں بزدلی ہے کیا بہادری ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے کیا بزدل تھے؟ صحابہ کرام بہادر تھے کیا بزدل تھے؟ ہمیں کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ ہمیں صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے, ہمیں سرکار کے راستے پہ چلنا ہے. وہ لوگ بہادر تھے اور بہادری میں جواب نہیں تھا ان کا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہادری کا حال یہ تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں جنگ گرم ہو جاتی تھی,
the way the
जब गर्म हो जाती थी और तीर और तलवार की झनकारें निकल रही होती थी मार्ग की वजह से, चिंगारियां निकल रही होती
थी
और आंखों में खून उतर जाता था, वहां तो जान जा रही है आमने सामने, एक दूसरे पर इतना गुस्सा होना होता है कि आंखों में खून उतर जाए और उसमें हम थक जाते थे, तो हम रेस्ट लेने के लिए हुजूर की पीठ के पीछे आ जाते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से निमट रहे होते थे, हमले रोक रहे होते थे, इतने बहादुर थे सरकार। जब कोई दुश्मन देखने के लिए थोड़ा सा घबराता था कि मैं देखने जाऊं ना जाऊं, पता नहीं सिचुएशन क्या है, हुजूर फरमाते लाओ मुझे घोड़ा दो मैं जाके आता
हूं।
एक घोड़ा आपने लिया और उसके बाद पूरा चक्कर लगा के आए, आपने उसके ऊपर थपथपाया ऐसा, इन्ना वजदना हूँ लबहरा, ये तो समंदर है, समंदर समंदर की मौज की तरह मुझे ले जा रहा था।
Yes, he said that he then patted the horse. He said this is like a sea. It was taking me around like the wave of the ocean.
वो जो आपने थपथपाया ना, उस घोड़े ने वो उंगलियों के निशान ले लिए।
He said that when he patted the horse took the prints of his hand.
और आप हैरत करेंगे कि आज तक उसकी नस्ल में वो निशान आते हैं।
He said that you will be surprised that the horses that have come, the progeny of that heart, you will still see those signs of that.
जब हम साउथ अफ्रीका जमात में गए थे,
when we went to Jamaat in South Africa,
तो वहाँ एक बस्ती में हमारा जाना हुआ।
There we went to a locality.
और वहाँ जो है ना अरबों की एक बड़ी तादाद आती जाती रहती है, वहाँ के एक साथी को एक अरब ने एक घोड़े का बच्चा दिया, उसने बताया कि ये उसी घोड़े का बच्चा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थपथपाया हुआ घोड़ा था। हाँ फरमाए आप देखेंगे कि इसके इस हिस्से के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के निशान उभरते हैं, मगर आपकी बहादुरी देखो, आप इन्ना वजदना हूँ लबहरा, हमने तो इसको समंदर पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शजील थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कैसे शजील थे, कैसा दरे खैबर उखाड़ दिया, दुश्मन थर्राता था इनके नामों से, तो ये बहुत बहादुर थे, हिम्मत के छोटे नहीं थे ये, तो बुलंद हिम्मती शजाअत का हिस्सा है, पस्त हिम्मती बुजदिली का हिस्सा है, बुजदिली कुफ्र का रिश्तेदार है, मुझे पीछे बात आई थी अभी, शजाअत ईमान की रिश्तेदार है, शजाअत ईमान की सिफात में से फजाइल में से, और ये बुजदिली जो है ना ये रजाइल में से, अंदर की गंदगी है ये, तो ये जो हमारी पस्ती है ये अंदर की गंदगी का जहूर है, ये मैं बता अर्ज करना चाह रहा था, जिन चीजों की वजह से हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उसमें मुझे इसका मुराकबा करना चाहिए कि ये तो बीमारी है यार,
the reason why I'm not able to be brave and not able to be courageous, I need to take an account of myself that this is a deficiency in myself and I need to take care of it.
ये illness है, ईमान वाली illness.
This is an illness of iman.
अंदर की ईमान वाली बीमारी है ये, खाली physically बीमारी नहीं होती है.
This is an illness of iman, not a physical.
उसका इलाज मुजाहिदा है.
And the इलाज for this is मुजाहिदा.
मुझे इसको छोड़ना होगा.
I need to leave this.
इसलिए हिम्मत करना होगा.
That's why we need to make
that. इसलिए मेरे दोस्तों हम सब अपने अंदर हिम्मत लाएं.
So we all need to break the brave.
इन छोटे छोटे आजार से अपना जहन हटाएं.
We should just take our mind away from all these small disturbances.
और तय करें कि नहीं भाई अल्लाह के दीन का काम तो करना है ताकि अल्लाह राजी हो जाए.
Then we all need to decide that I need to do the effort of deen because
जब मैं अल्लाह के पास जाऊं तो अंदर बाहर दोनों से अल्लाह को पसंद हूं.
When I go to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah likes me both externally and
सूरत से भी और सीरत से भी.
With my character and as well as
सूरत भी मेरी महबूब में मिलती जुलती हो उनकी और सीरत भी मेरी उनके महबूब में मिलता जुलता.
My physical appearance also resembles that of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. My internal also resembles that of Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. मेरे दोस्तों फिर देखें अल्लाह पाक कैसे नवाजेंगे. तो इसलिए हिम्मत और हौसला करना है, चार चार महीने के इरादे करना है. पुरानों में 40 दिन की तश्कील कैसी मेरे भाई, पुरानों में तो तश्कील होती ही 4 महीने की, और पुराना तो 4 महीने को बहुत इजी ले लेता है, उसकी हिम्मत कर लेता है, वो अल्लाह पे भरोसा कर लेता है, भरोसा एतमाद के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होके अपने नाम का इजहार करता है. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو ہمت دے, سب کو توفیق دے, سب کے ساتھ غیبی مدد شامل فرمائے, تائید غیبی نصیب فرما دے. وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے, صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, دانستہ اور نادانستہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اندھیروں اور اجالوں کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ سے معاف فرما دیجیے, اے اللہ امت کی مغفرت فرما دیجیے, اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے, اللہ امت کے احوال کو صحیح فرما دیجیے, اے اللہ امت کے خوف کو امن سے بدل دیجیے, امت کی اے اللہ اپنے فضل کرم سے مظلومیت کو ختم فرما دیجیے, اے اللہ مقہوریت کو ختم فرما دیجیے, مغلوبیت کو ختم فرما دیجیے, اے اللہ اعلی کلمۃ اللہ فرما دیجیے, اعلی کلمۃ اللہ کی توفیق نصیب فرمائیے, اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اے اللہ اس کے باطن کو اس کے ظاہر سے اچھا فرما دیجیے, اس کے ظاہر کو بھی اچھا فرما دیجیے, ہم سب کے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا فرما دیجیے اور ہمارے ظاہر کو بھی اچھا فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے قلوب کو نفاق سے پاک صاف فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے قلوب کو نفاق سے پاک صاف فرما دیجیے, ہمارے اعمال کو ریا سے پاک صاف فرما دیجیے, ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک صاف فرما دیجیے, ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک صاف فرما دیجیے, اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, اے اللہ دین کی محنت کا شوق نصیب فرمائیے, اے اللہ دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے, لگائے رکھیے, یا اللہ آپ اگر چاہیں تبھی ہو سکتا ہے, آپ اگر نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا, اے پاک پروردگار اور اس محنت کو ذریعہ فرما کر ہمارے ایمان میں کمال نصیب فرما دیجیے, ہمارے ایمان کے اندر پختگی نصیب فرما دیجیے, صدق نصیب فرما دیجیے, اے اللہ آپ کی معرفت عطا فرمائیے, آپ کی محبت عطا فرمائیے, آپ کا خوف عطا فرمائیے, اے اللہ آپ کی یاد کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کی یاد کی لذت عطا فرمائیے, آپ کے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دیجیے, ذکر کا شوق نصیب فرمائیے, قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائیے, قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی نصیب فرمائیے, ذکر اور تسبیحات کی پابندی نصیب فرمائیے, اخلاق کو ہمارے درست فرما دیجیے, ہماری عبادتوں میں خشوع خضوع نصیب فرما دیجیے, پابندی نصیب فرما دیجیے, اے اللہ عبادتوں کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے, فرائض کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے, سنن و مستحبات کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے, یا اللہ کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے, یا اللہ دعوت کے ساتھیوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے بچا لیجیے, یا اللہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, گمراہیاں ڈالنے والوں سے حفاظت فرمائیے, شقاق اور اختلاف ڈالنے والوں سے حفاظت فرمائیے, اے اللہ غلط راستے پر جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے, صحیح راستے کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھیے, صحیح جماعت کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھیے, اے اللہ اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے, اے اللہ ہمارے قلوب میں اے اللہ اتحاد پیدا فرما دیجیے, وحدت فکر نصیب فرمائیے, اے اللہ اپنے فضل کرم ہم سب میں وحدت پیدا فرما دیجیے, اے اللہ کلمہ واحدہ پر ہم سب کو مجتمع فرمائیے, اے اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, ہماری ضرورتیں پوری فرمائیے, ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے, تمام امراض سے تمام وباؤں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دیجیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.